विष्णु ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। ओम शांति। भाइयों ने लिखा है बोर्ड पर बाबा के पालना का अनुभव सुनाएंगे। हम बच्चे छोटे छोटे प्यारे बाप दादा के पास आए जब हम 9 बरस की थी, तब प्यारे बाबा के पास आने का सौभाग्य मिला, जिसमें प्यारे बाबा ने आरंभ से अनुभवी बनाया। क्यों 9 बरस के थे मगर बंधन में थे, तो बंधन में होने के कारण आरंभ से ही बाबा से जैसे एक डायरेक्ट संबंध रहा और बाबा ने ही सदा शक्ति बनी। बाबा हमें सदा कहते थे, बच्ची तुम्हें हनुमान बन के सती सीता का कल्याण करना। पहले परिचय देती हूँ, हमारी लौकिक मम्मी सती थी जो दादी प्रकाशमणि की बड़ी बहन थी। दादी प्रकाशमणि हमारी लौकिक में मासी है, तो हमारे परिवार में से सबसे पहले प्यारी दादी आई थी। पर तू दादी ने कभी हमें ये नहीं सुनाया हम कहाँ जाते, कभी दादी से पूछते थे कि आप कहाँ जाती हो, तो दादी हमें कहती थी हम गीता पाठी के पास संस्कृत पढ़ने के लिए जाती हूँ। क्योंकि दादी जानती थी यहाँ के नियम क्या है, तो हम कहती थी हम भी चलेंगी, तो दादी कहती थी मैं तो मैट्रिक में हूँ तो मेरा संस्कृत का कोर्स है, तुम तो अजन 4th क्लास में हो, जब मैट्रिक में जाएगी तब तुमको लेके जाए। तो दादी ने तो नहीं सुनाया, मगर बाबा को हमें बुलाना था। तो एक दिन हम नानी के घर जा रही थी तो रास्ते में बाबा का ओम का आवाज सुना। उस ओम के आवाज में ऐसी आकर्षण थी जो बाबा ने स्वयं बुलाया। हम और मम्मी थी, हमने कहा मम्मी ओम का आवाज सुनाई पड़ रहा है, लगता है यहाँ कोई सत्संग है। तो मम्मी तो जानती थी ये किसका मकान है, तो कहा ये लखीराज बाबू का मकान है, वो रिलीजियस है, कोई महात्मा जी को बुलाया होगा। हम कहा चले, तो लौकिक में मम्मी रिलीजियस थी, पिताजी मटेरियल थे और हम परिवार में पहला बच्चा थी, तो हम भी मटेरियल ही थी, बाप के साथ बेटा बेटा करके पाला। जब हमारे मुख से निकला चले तो मम्मी बहुत खुश, वो सदा चाहती थी ये पूजा करे भक्ति करे। और गए तो सामने क्या देखा, सामने प्यारे बाबा को देखा। महात्मा जी को बुलाया क्या था, बाबा ही महान बन गए। जाते ही गेट पर देखा प्रिंड साइलेंस लग रही थी, ओम की धुनी चल रही थी और प्रिंड साइलेंस। तब मुश्किल से सत्संग के अंदर 20 जने खन हो गए, सब अपने जाने पहचाने हुए थे। दादी प्रकाशमणि भी बैठी थी, मम्मा भी थी, शांतामणि दादी भी थी, सब अपने थे। और फिर ये सब हमारे स्कूल की, मैट्रिक की, आठवीं की, नौवीं की, सब जाने पहचाने। बस आते ही सच पूछो बाबा के हो गए। बाबा ने प्रथम दिवस ही ये शिक्षा दी, बच्चे जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। क्यों बाबा जानता था हम सबका आहार विहार कैसा है, तो हम सबको पावन बनाना था। उसमें सबसे पहले दिन बाबा ने जैसा संग वैसा रंग, सत्संग पार करे कुसंग डुबोए, इस पर प्यारे बाबा ने बहुत समझाया। साथ साथ कहा बच्चे कुसंग का सबसे बड़ा अड्डा है सैन्य माँ, सैन्य माँ तो सिंह की माँ है, गेट हेल है। अगर तुम बच्चे हेवन में जाने चाहते हैं तो हेल का द्वारा नहीं दे। मगर आपको क्या सुनाए, स्थापना से लेकर हम सबका अनुभव ये था, बाबा जो कहते थे तो करने की शक्ति भी दे देते कि आज से ये सब करना है। गोया बाबा ने जो प्रथम दिवस लेसन दिया वही सब जीवन में अपना ली। उसी दिन से लेकर ये नहीं करना है, बस बुद्धि में ऐसा आ गया। जो बाबा जानते थे ये सब बिजनेसमैन के बच्चे हैं, हर परिवार का संडे बाप फ्री है और संडे सब सैन्य माँ को ताकते हैं कि नई पिक्चर कौन सी आई है। इसलिए बाबा ने पहले दिन ही कह दिया सैन्य माँ तो सिंह की माँ है, गेट है। बच्चे जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा लक्षण बनेगा। और उसके बाद प्यारे बाबा ने सत्संग के नियम अनुसार आरंभ में भी बाबा ओम की धुनी गाते थे और लास्ट सच पूछो तो ओम के धुनी में इतनी अलौकिक शक्ति थी, जो आज इतना ज्ञान इतनी योग की ट्रेनिंग है तो भी पूरा अशरीरी नहीं बनते। मगर बाबा के उस ओम के धुनि में ऐसी ट्रेनिंग थी जो सहज अशरीरी बन जाते। और प्रथम दिवस ही हम सचमुच अशरीरी बन गई, सारी सभा उठ गई, हम बैठी ही रहे। तो बाबा तो जानते थे ये किसकी बच्ची है, हम नहीं छोटी थी, हम नहीं जानती थी, क्यों मम्मी साथ में थी। बाबा ने आते ही हाथ रखा और पहला यही कहा बेटी पहचानती हो, और आंख खुली आवाज निकला लगता है कहां आपको देखा है। कहां देखा है, हमने कहा वो याद में। बस उसी में बाबा ने हमें अपनी पहचान दे दी कि मैं तुम्हारा असली बाप। पर उसी दिन ही जीवन का सौदा हो गया हमारा असली बाप। उसी दिन से लेकर हम प्यारे बाबा के बन ही गए। चाहे कितने भी बंधन आए सब बाबा पार करता गया और बाबा के हो गए। उसके बाद प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जितने हमारे बाप के साथ सर्व संबंध है उस सर्व संबंध की प्रैक्टिकल में पालना, मात पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु के रूप में प्रैक्टिकल में हम सबको पाल। जब हम बाबा के पास बंधन काट के आए तो बाबा हम बच्चों की पालना सचमुच प्रिंस प्रिंसेस माफिक बाबा ने हम बच्चों की पालना की। जिस कारण हम जब भी बाबा के पास आए जो भी बंधन काटा कभी भी त्याग त्याग नहीं महसूस हुआ, भाग्य मिल रहा है, मिल ही रहा है, मिल रहा। जैसे लगा रेती का लड्डू छोड़ा और चूड़ी का लड्डू मिल गया। इसी रीति से करके हम प्यारे बाबा के बन। अब आगे चल के सदा बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी, बच्चे समय व्यर्थ नहीं करते। तब भले इतना ज्ञान नहीं था मगर बाबा का सदा बच्चों को कहना था, बच्चे ये अमूल्य समय है, इस समय को व्यर्थ नहीं। और आज भी हम सभी रोज मुरली में क्या सुनते हैं, ये संगम युग की भी अंतम घड़िया है, उसको व्यर्थ नहीं गवा। कराची में तो बाबा बच्चों को ऐसे कहते थे, बच्चे कभी कोई को माया तुरंत बाप के पास आ, समय व्यर्थ न जाए। बाबा को कराची में कोई बच्चा कहे बाबा हमको दो दिन से माया आ रही है, तीन दिन से माया आ रही है, बाबा ये बच्चों का सुन न सके। उस पर हम एक दिन क्लास में सुना रही थी, बाबा क्या कहते थे, बच्चे तुम पहचानते हो तुम कौन है, तुम मेरे बच्चे हॉलीवुड के एक्टर हो। देखो वो हॉलीवुड के एक्टर होते हैं ना, उनका अंग अंग इंश्योरेंस रहता है, जरा अंग में दर्द होगा कहेंगे हेलो दर्दन, आंख में दर्द है। तो उन एक्टर्स का, फिल्म के एक्टर्स का अंग अंग इंश्योरेंस है, वो है हॉलीवुड के एक्टर, और तुम मेरे बच्चे हो हॉलीवुड के एक्टर। तुम्हारे को भी कभी जरा माया आए कहो हेलो सर्जन, ये बाबा के थोड़े थे। इतने तक बाबा हंस के कहते थे हम बाथरूम में हो तो भी दरवाजा ठक ठक करो हेलो सर्जन, क्यों बच्चे तुम्हें फैमिली सर्जन मिला हुआ। कहने का भाव बाबा का क्या था, अपना समय व्यर्थ नहीं करो। और अब हम सभी इतनी यात्रा करके अंतम समय पर पहुंचे और अभी अथाह ज्ञान हम सबको मिला, जिसे हम सारी नॉलेज को जान के बाबा ने सब बच्चों को नॉलेज फुल बना दिया। ये संगम युग की घड़ियां बहुत अंतम घड़ियां और वैल्यूएबल घड़ियां। और सबको जब कहते हैं कलयुग का अंतम चरण है, फौरन हमारे कान में आता है, हम बच्चे औरों को कहते हैं कलयुग का अंतम चरण है, और बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे अब संगम युग का अंतम चरण। तो अंतम चरण में क्या तैयारी करनी है, श्वास श्वास सफल करना है, जिसके लिए रोज प्यारे बाबा अव्यक्त बाप दादा निरंतर याद और निरंतर सेवादारी की शिक्षा देते हैं कि हर प्रकार से मन से वाणी से कर्म से शुभ भावना से सेवा कर और याद के लिए निरंतर। अब याद को निरंतर बनाने के लिए हमें किस शक्ति की आवश्यकता है, हाथ उठाए जो सुनाई, हमारी याद निरंतर रहे उसके लिए किस शक्ति की आवश्यकता है, कौन सुनाएंगे। हाँ, एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति बनाने के लिए ऑलमाइटी बाबा ने हम बच्चों को कई प्रोग्राम दिए। एक बार प्यारे बाबा ने 40 दिन का प्रोग्राम रखा था। हम लोग यहाँ अबू में आए जब बेगरी लाइफ थी, उसमें आलमैती बाबा ने 21 बच्चों का नाम देके और विशेष योग का प्रोग्राम दिया। 3:30 से लेकर सुबह में 4:30 तक। देखो बाबा कैसे युक्ति से बच्चों को सिखाता है और प्रैक्टिकल कि हमें 21 बच्चों का भक्तों को साक्षात्कार कराना। मगर उस साक्षात्कार में जब 21 बच्चे ही निरंतर याद में हो गए तब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार बाबा 5 मिनट में कराएगा, मगर वो 5 मिनट कौन से हो गए वो बाबा ही जानता है। और अगर एक भी 21 में से इस तरह नहीं होगा तो सामने संदेशी सीएडी के रूप में बैठी है, वो रिपोर्ट लेके आएंगी फलाने बच्चे की बुद्धि भटक रही थी, इसलिए बाबा का जो फलाने भगत को साक्षात्कार कराना था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बताओ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें सिलेक्टेड 21 बच्चों को नाम देके, ब्रजकोठी में गैलरी थी, हम ऐसे बैठते थे, आप सोच लो 21 में बैठेंगे क्या बन जाएगा, विक्टरी। 10 ऐसे 10 ऐसे। उसमें बाबा स्वयं आते थे और सामने संदेशी बैठता था। बताओ बैठने वाले पर कितनी जिम्मेवारी है। अगर ये आ जाए तो महारथी की तो इज्जत चली गई, अगर ये कंप्लेन आ जाए कि इसका बुद्धि योग भटक रहा था, बाबा को फलाने भगत को साक्षात्कार कराना था मगर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सचमुच बाबा तो बच्चों की लाज रखता है, ये सब बाबा ने हम सबको पुरस्कृत कराया। हम लोग जो 1 घंटा वो योग करते थे एकदम अलर्ट हो गए, जिसमें न तन डोले न मन डोले। बाबा ने कहा जैसे ग्रुप फोटो निकाला जाता है तो ग्रुप फोटो में एक भी अगर हिल जाता है तो फोटो खराब हो जाता है, इसी रीति से यहाँ भी एक की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो ऊपर से कंप्लेन आ जाए। आलमैती बाबा जब ऐसे प्रोग्राम देते थे हम बच्चे बड़े अलर्ट होके फुल अटेंशन देके मन और तन के साथ साथ मन और बुद्धि को भी पूरा स्थिर करके एक बाबा के याद में बैठे। तो हम सभी योगी तो बन गए, मगर योग को पावरफुल बनाने के लिए, निरंतर बनाने के लिए हम सबको एकाग्रता की शक्ति को अच्छी रीति से अपनाना होगा। हम 1 घंटा योग में बैठते हैं, हर एक गहराई से चेक करेंगे कितना बार कनेक्शन ढीला होता है, कितना बार टाइट होता है। आज चार्ट लिखते हैं भाई तो ऐसे लिखते हैं भाई आधा घंटा योग में बैठे ये बैठे, मगर आपको बताते हैं कराची में जब हम बाबा ने हम बच्चों को चार्ट लिखना आरंभ कराया तो हम लोग ये नहीं लिखते थे 1 घंटा योग में तो 1 घंटा बैठे, मगर 15 मिनट पहली स्थिति हमारी कैसी रही, सेकंड स्टेज की स्थिति कैसी रही, योग में बैठे भी हमारे स्टेज परसेंटेज की कैसी रही, उसका अटेंशन रखते थे। तो हम सबको याद की यात्रा को पावरफुल बनाने के लिए एकाग्रता की शक्ति के ऊपर बहुत अटेंशन, ये आलमैती बाबा ने हम बच्चों को प्रोग्राम देके देके ऊपर से अभ्यास कराए कि कैसे बच्चे एकाग्र चित्त होते, मगर वो एकाग्रता का आधार हमारी दिनचर्या पर। एकाग्रता की शक्ति कब आएंगे? जब मन बुद्धि संस्कार हमारा एक दशा से चलेगा, मन एक तरफ चले, बुद्धि दूसरे तरफ चले, संस्कार तीसरे तरफ चले, तो हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। उसके लिए हमें अपने मन बुद्धि संस्कार को एक दशा से ले चलना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति है। तो बाबा ने स्टार्टिंग में अनेक प्रोग्राम देके हम बच्चों को योग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कराची में हम सब थे, बाबा ने पाकिस्तान के अंदर यज्ञ के सेफ्टी का कौन सा साधन बनाया, बाबा ने 12 बच्चों को सब ड्यूटी से फ्री करके अखंड योग का प्रोग्राम बनाया, और उसमें बाबा ने चैलेंज दे दिया, जिस महारथी के घंटे में अगर कोई विघ्न आया, गोया उस महारथियों ने ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं की। कितनी बड़ी चीज है। मम्मा बाबा सारे यज्ञ के कारोबार में बच्चों छोटों से काम कराते थे, और हम 12 बच्चों को बाबा ने सिलेक्ट करके अखंड योग में बिठाया। 12 इकट्ठे नहीं बैठते थे, एट अ टाइम में चार का ग्रुप होता था दिन में, और रात में 2-2 घंटे का होता था। मैं एक गद्दी पर बैठता था, 3 सामने बैठते थे, मगर बाबा ने कहा था यही सेफ्टी है यज्ञ। उसमें क्या टेंशन रहता था, हम 4 के ऊपर पूरा जुमा है सारे यज्ञ का योग का किला बना के बैठने का मजबूत का। सचमुच आपको बताते हैं, 1 घंटा जब योग करा के जाते थे और सीधा खटिया पर जाके लेट जाते थे, जैसे कोई बहुत हार्ड वर्क करके आए, क्यों फुल अटेंशन रखते थे 1 घंटा, हमको फुल पावर में एकदम जैसे यज्ञ कुंड बना के अग्नि जला के बैठना। तो उसी योगों के अंदर बाबा ने प्रोग्राम देके हम बच्चों को एक रस अवस्था अथवा निरंतर योग की स्थिति कैसे रहे, पावरफुल योग कैसे रहे, एक बाबा और हम तीसरा न कोई, ये अटेंशन हम सबका योग के अंदर फुल रहे, अपने बुद्धि की तार पावर हाउस से पूरा जोर के बैठे। इसके लिए बाबा पहले ही हम लोग जब क्लास में आते थे तो बाबा ट्रेनिंग देते थे कि बच्चे अगर कोई भी ड्यूटी वाले को थोड़ी लेट हो जाए तो वो ऐसा न करे कि क्लास में आके बैठे उसके बाद अपने योग को आरंभ करे। अगर जरा भी तुम बच्चों को क्लास में आने में ड्यूटी के कारण देर हो जाए कोई कारण से, तो बाहर से ही ऐसा पावरफुल योग करके आओ जो अंदर आते ही दूसरों को लगे कोई लाइट आ गई। ऐसे नहीं कि पीछे आके बैठो उसके बाद योग को आरंभ कर। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को योग की ट्रेनिंग कराची में, बाबा हम बच्चों को बहुत ध्यान कहते और रोज नए नए ढंग से बाबा कहते थे कि बच्चे ज्ञान का, जैसे विश्व को हम लाइट दे रहे हैं, रोज नए नए किस्म से बाबा बताते थे कैसे योग करो, कैसे करो, कैसे करो। तो जब इसी रीति से योग करते थे तो योग के अंदर अनुभव कहता था बहुत पावर आती। तो हम सभी बाबा रोज कह रहे निरंतर योगी बनो, निरंतर योगी बनो। तो उसका अभ्यास करने के लिए हम जब भी योग में बैठे तो लक्ष्य लेके बैठे, हमें एकाग्र चित्त होके बैठे, हल्का होके न बैठे, मगर पावरफुल योग में बिंदु बन के, बिंदु बार से हमें लाइट माइट शक्तियों का खजाना पाना है। ऐसे ना बाबा के याद में बैठे हैं, जब होता है हमको खजाना पाना है तो हम अलर्ट होके बैठते हैं, तो उसमें हमारी योग की स्थिति भी पावरफुल रहती है, नहीं तो हमारी योग की स्थिति हल्की हल्की। बाबा का भी हम लोग चरित्रों में भी बाबा का देखते थे। एक दिन बाबा बैठे थे, बड़ी दीदी बैठी थी, इस बाबा आप क्या सोच रहे? बाबा ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं मेरे फ्लॉलेस डायमंड कितने, बताओ। बाबा ये सोच रहे थे। तो बड़ी दीदी बहुत हमारी रमणीक थी और बाबा से बहुत हल्की थी, जिस बाबा अभी पुरुषार्थी, तो अभी तो सब पुरुषार्थी है, अभी किसको फ्लॉलेस कहेंगे? बाबा किसको फ्लॉलेस कहता है? बाबा ने कहा, बाबा फ्लॉलेस डायमंड उसको कहता है जिस दिन से बाप का बना उस दिन से लेकर कोई देहधारी की तरफ लौकिक चाहे अलौकिक में उसकी बुद्धि न दे, उसकी बुद्धि की लाइन ये क्लियर रही कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। जब हम इस बुद्धि के लाइन को क्लियर रखेंगे तो हम योग में रहते भी हम पावरफुल रह सकते हैं। अगर हमारी पहली बुद्धि की लाइन चाहे लौकिक चाहे अलौकिक कहां भी लीक अप होगी तो पावरफुल नहीं बन सके। पहला हम ब्राह्मण बच्चों को फुल अटेंशन दे रखें, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर, दूसरा हमारी कनेक्शन निरंतर एकाग्र, स्थिति हमारी एक रस हो। जब इस चीजों का हम अटेंशन रखेंगे तब हमारे योग के अंदर पावर आए, जिसे हमें हर प्रकार से, देखो हमारी मीठी मैया हम बच्चों को क्या शिक्षा देती थी। हम लोग के यज्ञ में, हम यंग कन्याओं में से कराची में एक कन्या ने शरीर छोड़ा, उस दिन मम्मा ने हम बच्चों को शिक्षा दी, चाहे तुम बच्चे सदा इसी नशे में रहते हो, हम ही तो वैजंती माला के मन के है ना, हम कोई अभी थोड़ी जाने वाले हैं, हमें बहुत काम करना है, मगर तुम बच्चों को देखो शिव बाबा का बुलावा आ जाए तो मैं तैयार। देखो मम्मा का पुरुषार्थ होता, और गहराई से सोचो मम्मा ने जो कुछ पुरुषार्थ किया अपने निजी लगन से किया। हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं प्रोग्राम से, मम्मा ने जब यज्ञ के अंदर कोई सवेरे उठ के योग करने का प्रोग्राम नहीं था, मम्मा जिस दिन से आई हम बच्चों ने देखा मम्मा 2:30 बजे ब्लू लाइट का बल्ब जला के इजी चेयर पर बैठ के योग करते थे। योग मनन मथन अध्ययन और साथ साथ आलम, तो हम सब बच्चों की जीवन, हम सब की छोटे बड़ों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ, चाहे कितना भी सेवा का जुम्मा हो तो भी स्टूडेंट लाइफ को न भूल। हम कभी हंस के कह देते हैं कोई बहनों छोटियों को, ऐसे न समझो हम दादियां बने तो ऐसे कोई गद्दी पर बैठे थे। कराची के अंदर हम लोग भी मनसा वाचा कर्मणा 15-15 घंटा काम करते थे, मगर बाबा ने योग की ऐसी लगन की ऐसी की थी, काम पूरा करते थे फौरन ऊपर चल के जाके योग करते थे, वो करते थे, टेनिस कोर्ट में योग करते थे, वो करते थे, आपस में पुरुषार्थ करके ग्रुप बना के 2-2 बजे का प्रोग्राम बनाते थे, कि बाबा को जाके कहते थे बाबा हमारी सुप्रीम पार्टी का दस दिन का प्रोग्राम ये योग का, एक से लेकर पांच का है, कोई सुप्रीम मनोहर पारसी का ही है। जब बाबा को कहते थे और बाबा देखता था बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा भी 2-2.5 बजे आके योग का बल बच्चों का हुलास बनाने के लिए बाबा भी पहुंच जाते थे। तो गोया योग जो हमारी सब्जेक्ट है उसकी अंतरक मेहनत की, लगन की और अंतरक मेहनत की आवश्यकता है, जिसके अंदर हम अंतरक पुरुषार्थ करें और लक्ष्य रखें। हमें जो भी योग में बैठना है वो टाइम पूरा पावर हो, तभी तो हमारे विक्रम जगत करेंगे। देखो अभी तो हम बाबा इतना नहीं, मगर जब कराची में हम थे, बाबा कभी देखे फलाना बच्चा अमृत वेले नहीं आता, बाबा सुनता था, अरे बच्चे तुम लोग को नींद कैसे आती है, तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों का ऋण चढ़ा हुआ है और तुमको नींद आती है। बच्चे जिसके माथे पर ऋण होता है उसको नींद आती है क्या? तुम लोग बाबा ऐसे कह देते थे रोज रोज, बच्चे तुम्हारे सिर माथे पर 63 जन्मों का ऋण चढ़ा हुआ है और तुमको नींद आती है, योग में आलस आता है, ऐसा बाबा कहते थे। जो एकदम सचमुच आपको कहें, पुरुषार्थ में एकदम पावर आ जाती थी, सचमुच हमें 63 जन्मों का ऋण चुकाना है और 21 जन्मों की प्रालबद बनानी है, 84 जन्मों के किस्मत का फैसला करना है, उसकी मेहनत अभी करनी है। इस थोड़े से पीरियड के ऊपर 84 जन्मों के किस्मत का फैसला, 63 जन्मों का ऋण चुकाना है और 21 जन्मों की प्रालबद बनानी है। तो हमें कितना अंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। उससे प्रैक्टिकल क्या होता था, कभी हम लोग को कोई की बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, बस अपनी ड्यूटी की, बस डायरी उठाई, ज्ञान का मनन किया, मथन किया, पॉइंट्स लिखी, ये की, उसी में ही मगन रहते थे बस। और बाबा भी होमवर्क देते रहते थे, बच्चे भाषण करने जाओ तो कैसे करो वो लिख के आओ, बाबा नंबर देते थे और उसमें हम लगन और बढ़ती थी। गोया हम सब की अभी लाइफ क्या है, स्टूडेंट लाइफ, कितने भी बड़े हो जाएं मगर हम सब गॉडली स्टूडेंट है। हम जानते हैं हमारी यज्ञ सेवा में हमारे मधुबन निवासियों के ऊपर भी बहुत कार्य है, मगर उसके बाद भी सब कुछ कार्य करने के बाद हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ समझ के अपने पढ़ाई में फुल थे। बाबा की एक एक मुरली कैसी आती है, बाबा ने अभी महसूस, सच्ची दिल से महसूस की शक्ति को बाबा ने कितना अव्यक्त, बाप दादा एक ही टॉपिक के ऊपर कितना क्लियर करके देता, सचमुच सच्ची महसूसता वो चीज है। कोई के अंदर कितनी भी बड़ी कमजोरी हो वो एक सेकंड में दृढ़ता के द्वारा परिवर्तन, दृढ़ता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, परिवर्तन का आधार है दृढ़ता की शक्ति। हम आपको अनुभव सुनाती है, हम 83 में विदेश में गई थी, जब विदेश से आई थी तो हम रांची सेंटर की बहन बीमार थी, दीदी ने कहा वहां जाओ तुम पहले उससे जरूर मिलो। तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रेडियो अनाउंसर आए, उसने हमसे ये सवाल पूछा, आपने विदेश के अंदर और भारत के अंदर अध्यात्मक ज्ञान की और राजयोग के अंदर रुचि के अंदर क्या अंतर देखा? तो मेरे मुख से निकला कि विदेशियों के अंदर दृढ़ता है। क्यों? हम लंदन में रही थी टेनिसन रोड में, जो लंदन का सेंटर था पहला, और रहती वहां थी और जानकी दादी के पास क्लास कराने, रोज क्लास करने, सारा दिन वहां पर, रात यहां रहती थी। तो वहां हमने देखा कि विदेशियों को भारत का राजयोग बहुत ऊंचा है, एक अनमोल प्रॉपर्टी है। उसी लगन से आते थे, हम राजयोग सीखने जाते और फौरन पूछते थे यहाँ के रूल्स रेगुलर क्या है। तो वहां देखती थी कि लंदन में बहने बिल्कुल क्लियर कह देती है, कंप्लीट सेलिबसी, कंप्लीट वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, गुड सोसाइटी। हम भारत में तो हाँ कोर्स कराएंगे, पीछे उसको ब्रह्मचर्य का नियम बताएंगे। आज योग शिविर के बहाने चार स्तंभ में सुना भी लेते हैं, तो थोड़ा सोच के मैं कहा जी, मगर वहां हमने देखा कयों में इतनी राजयोग की सीखने की लगन, ये कह के कह जाएंगे एग्री, जिसने एग्री किया उसे दोबारा पूछना नहीं। और यहाँ हाँ, तो उसको मैंने अनाउंसर को कहा कि वहां का शब्द है एग्री और भारत का शब्द है कोशिश करें। खूब हंसने लगा। हमने कहा कोई भी भारत के अंदर नियम देंगे, कोई स्मोकिंग करता है हाँ कोशिश करेंगे, तो हम लोग को भी पूछने की मार्जिन होती है, सिगरेट पिया तो नहीं, तो कहेंगे हाँ पहले 50 पीता था, आज 2-4 पिया, 5 पिया, क्यों कोशिश करेगा। जब कह रहा है कोशिश करेंगे तो उसकी कमजोरी सुन रही है, उसको प्रतिज्ञा करने की शक्ति नहीं, तभी कह रहा है कोशिश करेंगे, तो इसके पास मेरे जाने की मार्जिन है, कमजोरी भी देख रही है, इसका गेट खुला है मेरे लिए। तो खूब उसको इतना पसंद आया कि ये विदेश और भारत के अंदर लिए। मैं कहा भारत के अंदर कहेगा कोशिश करेंगे और वहां कहेगा एग्री, और एग्री कभी कभी कोई ऐसा पावरफुल ऐसा बोलता है जो दोबारा उसे पूछने की दरकार नहीं है, किया या नहीं किया, और यहाँ बार बार पूछेंगे हाँ भाई सिगरेट पिया तो नहीं, तो कहेंगे हाँ पहले 7 पीता था, अभी 20 के कम कर दिया है, 4 कम किया है, क्यों दृढ़ता नहीं। और वहां जो ऐसे भारत तो फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम में इसलिए मर्यादा में रहते हैं, वहां तो कोई मर्यादा नहीं थी, और सबसे अव्वल नंबर वो देखो कैसे चल रहे हैं इस पावर से, दृढ़ता के पावर। तो हमने उसको यही कहा, उसको इतना पसंद आया तो कहा अब मैं हाँ टेप खोलता हूँ, मैं कह दे सर क्वेश्चन पूछता जाना, आप बोलना, मैं सुबह रेडियो जब न्यूज सुनाएंगा न्यूज से 8:30 बजे मैं रेडियो में सुनाएंगा और आप जो है सुनना। सचमुच देखा तो ऐसा हुआ, तो हमको सचमुच रियलाइज हुआ कि दृढ़ता की शक्ति सबसे बड़ी। हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, हम सभी जानते हैं कोई न कोई कमी हमारे अंदर, जो ही हमको आगे बढ़ने में चाहते हैं बहुत आगे जाएं, मगर कोई न कोई कमी जो हमको आगे बढ़ने में रुकावट होती, तो हम सभी क्या करें, बाबा के कमरे में बैठ के, बाबा है हमारा आईना, आईने के आगे जाने से दागन दाम के सब दिखाई पड़ते। जैसे होता है ना कोई किसको कह दे काला, कहेगा तू बड़ा गौरा है, मगर आईने के आगे जाने से पता लगता है मैं काला हूं या गौरा हूं। इसी रीति से अब जो पीरियड है, कोई को किसको समझाने का पीरियड नहीं है, स्वयं कोई परिवर्तन करने का लास्ट पीरियड है। तो बाबा हमारे लिए आईना है, बाबा के सामने जाए और अपने आप को पूरा देखे, और जो कोई कमी होती है वो हरेक जानता है कि मेरे अंदर ये गुण है, एक ही ये कमी है जो मेरे को आगे बढ़ने में बिगड़ा, क्यों बाबा के बच्चे बहुत मंजिल सीधी आगे आ गए और सब पुरुषार्थ ही है, मगर उस कमी को जब तक हम दृढ़ता का संकल्प नहीं करेंगे तब तक नहीं जाए, कोशिश करेंगे तो कोशिश से नहीं जाती, क्यों कोशिश शब्द है ही कमजोरी का, दृढ़ता ही परिवर्तन की शक्ति। क्योंकि हम सभी देखेंगे एक दिन एक क्लास में हम गई, क्लास कराते कराते हमने सवाल पूछा, जिसने 2 वर्षों से क्रोध नहीं किया हो तो हंस था, खूब हंसने लगे। मैं कहा दादी आप 2 वर्ष पूछ रही हो, आप 1 मास पूछो 1 सप्ताह पूछो। हमने कहा क्यों, देखो कितना हम पवित्रता के लिए कितना पूछे तो नशे से कहते हम 10 वर्षों से है, हम 20 वर्षों से है, हम 25 वर्षों से पवित्र है, और ऐसे पूछे 10 वर्षों से किसने क्रोध नहीं किया हो तो जल्दी हाथ उठाएगा। तो हमने क्लास में पूछा तो क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी चीज थी, 2 की चीज थी, कोई की स्त्री सुने पति न माने, जिसके लिए इतना धर्म युद्ध हुआ स्थापना से, वो काम हम सभी ने कर दिया और क्रोध न करें ये तो हमारी बात है। लीजिए, इसमें हम वीक क्यों रहे हैं? जो दिल से दृढ़ता से कोई कहे हाँ इतने वर्षों से मैंने क्रोध नहीं किया, कह सकता है कोई? कारण क्या? हमने इसके लिए दृढ़ता नहीं की, उसके लिए बाबा से सौदा किया, प्रतिज्ञा कर ली, पता लग गया बाबा से तो मिलने का यही नियम है। तो प्रतिज्ञा ही परिवर्तन का आधार, दृढ़ता ही परिवर्तन का आधार। तो हम सब ने उसके लिए तो प्रतिज्ञा कर ली, तो हमने कहा क्रोध के लिए बाबा ने छुट्टी दी है क्या? क्रोध भले करो, बाबा कहता है बच्चे मीठा बनो, स्वीट बनो। स्वीट बनने लिए कोई खर्चा नहीं, कोई कह दे मैं गरीब हूं क्या करूं, हाँ स्वीट बनने लिए पैसा चाहिए, स्वीट बनने के लिए पढ़ाई चाहिए, कह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कोई न पैसा चाहिए न पढ़ाई चाहिए, मगर क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। तो जैसे ये चीज है, इसी रीति से हर सब्जेक्ट के ऊपर जो जो हमारे अंदर वीकनेस है उसके परिवर्तन का आधार है दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा अक्षर वास्तव में भारत का ये भारतवासियों के लिए गायन है, धर्त परिय धर्म ने छोड़ी। प्रतिज्ञा शब्द हम भारतवासियों का है। तो अब अंतम टाइम क्या है, हम सभी गहराई से अपने चार्ट को चेक कर जो जो हमारे अंदर कमी हो उसको हम प्रतिज्ञा करके उसको सुधार कर, एक ये। और दूसरा साधन क्या है, जो उसके अपोजिट हो, जैसे क्रोध है उसके अपोजिट स्वीटनेस। हम स्वीटनेस को अपनाना है, हमको किसी परिस्थिति में स्वीटनेस को नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव पुरुषार्थ ये, अभी हम सबको अपने कमियों की माला नहीं जपनी है, मगर उनके अपोजिट जो पॉजिटिव है गुण कौन सा है उसको हम पूरा फुल मार्क्स से अपनाएं, तो उस फुल मार्क्स से हमारी कमी आप ही सरेंडर करो। जैसे बाबा ने पहली सीजन की इस सीजन की मुरली बनाई, बच्चे सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो, हमको ये ऐसी मुरली अच्छी लगी, एक मुरली हम सभी धारण कर ले, हम ये लक्ष्य रखें हमको सबको सम्मान देना है। क्रोध आएगा, अव्यक्त बाप दादा हम सबको, हमको सचमुच गहराई से हम बैठ के सोचे कि ब्रह्मा बाबा ने साकार में हम सबको सब पढ़ाए, माया जीत बनने की युक्तियां विधि विधान सब सुनाए, और सब सारे ज्ञान का साथ 31 बरस बाबा ने साकार में सागर होके हम सबको खूब पढ़ाए। कहते ना सागर इतना है ज्ञान का सागर जो सारी सृष्टि करो कलम लिखाया नहीं जाए, सारी सृष्टि को पृथ्वी कर दो, पृथ्वी को सारा कागज कर दो, सागर को स्याही कर दो, दिखा नहीं सकते। आपको क्या बताएं, जब कराची से हम आए हमारी मीठी मम्मा ने सब फाइल बना के मूल्या आद से अंत तक इतने फाइल हमारे यहाँ भरी हुई थी, अब पाकिस्तान से आ रहे हैं कितने उठा के जाएंगे। मम्मा को ज्ञान रत्नों का इतना लव, ये अनमोल खजाना है। पिछाड़ी के 3-4 मास हम बच्चों को बिठा के सब मूल्यों का सार निकाला और लास्ट में हम बूढ़े सागर में मूल्यों के डाल के मूल्यों का सार लेके आए। अलग बाबा लिखता था उसका अलग, बाबा मुरली चलाता था उसका अलग, सारा खजाना लेके हम सभी आ गए। ज्ञान सागर में बाबा ने इतना पढ़ाया। अब अव्यक्त बाप दादा सारी शिक्षाओं को जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल करके देता है, बच्चे सम्मान में रहो सम्मान दो, दो अक्षर है मगर ये कैप्सूल है, जैसे कैप्सूल पावरफुल होता है ना उससे आ जाए, बहुत स्वीटनेस। वैसे दवा खाते हैं कड़वी लगती है, कैप्सूल में खाते हैं कड़वापन भी नहीं आता है। हा? तो अव्यक्त बाप दादा हम लोग को कैप्सूल में पावरफुल बन के सब सिखाई देता है, कितनी सीठी मीठी शिक्षा दी, सच्ची दिल से महसूस करके शक्ति को अपनाओ। सच्ची दिल से जब महसूस हो जाए फिर परिवर्तन में कोई देर नहीं। बाबा ने कह दिया स्व परिवर्तन का आधार है सच्ची दिल से महसूसता। तो महसूसता भी करें और उस महसूसता के बाद दृढ़ संकल्प करके उसको हम सभी परिवर्तन करें। जब इसी रीति से हम सभी अब इसमें लग जाए फिर हमें क्या होगा, हमें दूसरे देख को देखने की आवश्यकता नहीं। गहराई से देखेंगे हम लोग संगम युग को जानते हुए भी, हम ब्राह्मण बच्चों ने दूसरे को देखने में बहुत समय व्यर्थ गवाया। बाबा तब मीठी कह देते ना, बच्चे सामने की दृष्टि तुम्हारी बहुत तेज है और अपने की नजदीक की दृष्टि तुम्हारी कमजोर है और दूर की दृष्टि तुम्हारी तेज हो गई है। हम औरों की कमियां जल्दी देखते हैं और अपनी कमी को नहीं देखते। इसलिए बाबा रोज कह रहा है सबकी विशेषता देखो, सबकी विशेषता देखो, सबकी विशेषता देखो। क्योंकि ये तो पक्की बात है, जो भी बाबा का बच्चा बाबा के पास आया है उसके अंदर विशेषता जरूर है, कोई ना कोई विशेषता है, सब बाबा ने सिलेक्ट किया है उसको, ये तो गारंटी। तो हमें क्या करना है, जिसकी जो विशेषता है वो देखे। और हम सभी ने सबके कमजोरियों को देखने में बहुत समय गवाया। अब हम इस आंख को तो बंद कर, हमको दूसरे को देखना ही नहीं, अभी टाइम ही नहीं बचा है दूसरे को देखने का। हम अपने को देखें और अपने को परफेक्ट बनाए। इसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी के गुफा में बैठ के अपने आप को परफेक्ट बनाओ। उसकी युक्तियां ये, पहला अंतर्मुखता की गुफा में रहे, अपने आप को ही देखे, योग के अंदर एकाग्रता की शक्ति को धारण करे, परिवर्तन के लिए दृढ़ता की शक्ति को धारण करके इन सब चीजों को अपना के, महसूसता की शक्ति को अपना के स्व परिवर्तन करके भाव समान संपन्न और समान बनने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। टाइम भी हुआ तब हम सभी समय के साथ सलाम कर सकेंगे, क्यों समय थोड़ा है, हम सबको काम बहुत है। अर्जुन हम लोग को अपने आप को बनाने का काम बहुत है और टाइम बहुत थोड़ा है, मगर इन मुख्य सब्जेक्ट पर हम सभी ध्यान देंगे तो सहज इससे हमको अपना सकते।